आगे सबक देखिए भाई, वहुआ अयल मुस्तस्ना मुतलकन हैसु उलिमा अव्वलन बिवजही युसहिहु तक्सीमहु कमा अरफ्ता वसानियम बिमा युतफत्तनु लहु मिन तारीफ किस्मैहि अनिल मज़कूर बाद इल्ला व अखवातिहा सवा उनका न मुखरजन औ गैर मुखरजिन वलिहादा लम युअर्रिफहु अला हिदतिन रौमन लिलिख्तिसार मनसूबुन वुजूबन। भाई गुज़श्ता सबक में मुस्तस्ना की बहस चल रही थी भाई, आपने पढ़ा कि इस्तिस्ना के लिए 11 कलिमात ये जिक्र करेंगे भाई, और वो 11 कलिमात कौन से हैं? इल्ला है, खला, आदा, मा खला, मा आदा, लैसा, लायकुनु, गैरुन, सिवा, सवा और हाशा। इनमें से इल्ला के अंदर तफसील है, जबकि खला, अदा, मा अदा, मा खला और लैसा और लायकूनु के बाद मुस्तस्ना मनसूब होगा, और गैरुन, सिवा, सवा और हाशा के बाद मुस्तस्ना मजरूर होगा। और इल्ला के अंदर तफसील है कि इल्ला जब भी इस्तिस्ना के लिए कलाम के अंदर आए तो सबसे पहले फौरन ये देखें कि ये मुस्तस्ना मुनक़तिअ है या मुत्तसिल है। अगर मुनक़तिअ हो तो मनसूब होगा, अगर मुत्तसिल है फिर देखें कि ये कलाम मूजब है या गैर मूजब। अगर कलाम मूजब हो फिर भी मुस्तस्ना मनसूब होगा, अगर गैर मूजब हो फिर ये देखें कि मुस्तस्ना मुकद्दम है या गैर मुकद्दम है। अगर मुस्तस्ना मुकद्दम हो तब भी मनसूब होगा, और अगर गैर मुकद्दम है तो फिर ये देखें कि मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है या मज़कूर नहीं। अगर मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर है तो फिर ये मुस्तस्ना मनसूब भी हो सकता है, और आप इसको माकबल से बदल भी बना सकते हैं, और बदल बनाना मुख्तार है, पसंदीदा है। और अगर मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर नहीं है तो फिर मुस्तस्ना का एराब आला हसबिल आवामिल आएगा। भाई तफसील समझ में आ गई। और आपने ये भी पढ़ा था कि ये जो आला हसबिल आवामिल है मुस्तस्ना, इसको मुस्तस्ना मुफर्रग भी कहते हैं, जो इल्ला के बाद आता है, कलाम गैर मूजब में होता है और मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर नहीं होता। भाई मज़कूर नहीं होता। फिर उसके बाद गुज़श्ता सबक में साहिब काफिया ने मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुस्तस्ना मुनक़तिअ की बाकायदा तारीफ की थी, और बतलाया था कि मुत्तसिल जो है हुवल मुखरजु अन मुतअद्दिदिन लफ्जन औ तकदीरन बिइल्ला व अखवातिहा, कि मुस्तस्ना मुत्तसिल वो है जिसको निकाला गया हो शय मुतअद्दिद से, चाहे उसके अज्ज़ा में तअद्दुद हो, चाहे उसके उसकी जुजियात और अफराद में तअद्दुद हो, उससे निकाला गया होता है। और किसके जरिए निकाला जाता है? इल्ला और उसके अखवात के जरिए। लिहाजा अगर हुरूफ आतिफा वगैरह के जरिए माबाद को माकबल से निकाल लिया जाए तो वो मुस्तस्ना नहीं कहलाता। जैसे मैं कहता हूं जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए, ला जैदुन, जैद नहीं। तो देखो ये ला जो है ये अदात इस्तिस्ना, ये कलिमात इस्तिस्ना में से नहीं है, अगरचे इसके जरिए भी जैद को माकबल के हुक्म से निकाला गया है, तो इस जैद को मुस्तस्ना नहीं कहेंगे। बल्कि ये ला हर्फ अतफ है और ये नफी का फायदा देता है, तो लिहाजा ये जैद मातूफ है कौम पर, और जो कौम का एराब होगा वही एराब जैद का भी होगा। और जबकि मुस्तस्ना मुनक़तिअ वो है जो इल्ला और उसके अखवात के बाद मज़कूर तो होता है लेकिन माकबल से वो मुखरज नहीं होता। वो जो माकबल में मुतअद्दिद शय है, वो शय जिसमें तअद्दुद है, उससे ये मुखरज नहीं होता। जैसे जा अनिल कौम इल्ला हिमारन, वो लोग मेरे पास आए सिवाय किसके? हिमार के। तो देखो हिमार माकबल के अंदर दाखिल ही नहीं है, तो ये मुस्तस्ना मुनक़तिअ है। और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, यही एक मिसाल मुस्तस्ना मुत्तसिल की भी हो सकती है और मुस्तस्ना मुनकतिया की भी। सारा दारो मदार मुखरज और गैर मुखरज होने पर है। अगर जैद उस कौम के अंदर पहले दाखिल था, यानी अल कौम के जरिए ऐसी जमात की तरफ इशारा किया कि जैद भी उन्हीं में से एक था, तो जब मैंने कहा जा अनिल कौमु वो लोग मेरे पास आए, तो इससे पता चला कि जैद भी आया है। फिर इल्ला जैदन कहकर जैद को इस कौम से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो ये जैद मुखरज हुआ, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है। और अगर अल कौम से ऐसी जमात मुराद है जिसमें जैद पहले दाखिल ही नहीं था, तो फिर इल्ला जैदन कहकर जैद मुखरज नहीं हुआ, वो गैर मुखरज है। जब वो गैर मुखरज है तो फिर वो मुस्तस्ना मुनकतिअ है। तो सारा दारोमदार किस पर है, मुखरज और गैर मुखरज होने पर। अगर मुखरज है तो वो मुस्तस्ना मुत्तसिल है, और अगर गैर मुखरज है तो वो मुस्तस्ना मुनकतिअ है भाई। जबकि बाज़ उलमा ने मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुनकतिअ की और तारीफ की, वो फरमाते हैं कि मुस्तस्ना मुत्तसिल और मुनकतिया का दारोमदार जिन्स पर है, यानी अगर मा बाद जो है मा कबल की जिन्स में से है तो वो हर हाल में मुत्तसिल है, चाहे निकाला गया हो या ना निकाला गया हो, बस मा कबल की जिन्स में से होना चाहिए। तो उनके नजदीक जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन ये हर हाल में मुस्तस्ना मुत्तसिल ही है, क्योंकि जैद अल कौम की जिन्स में से है। अल कौम से भी, अल कौम भी आदमियों की जमात को कहते हैं और जैद भी आदमी है, इंसान है। तो ये हर हाल में ये जैद जो है मुस्तस्ना मुत्तसिल है। और जा अनिल कौमु इल्ला हिमारन ये जो है मुस्तस्ना मुनकतिअ है, क्योंकि हिमार माकबल की यानी अल कौम की जिन्स में से नहीं है। आगे सबक देखिए भाई, कहते हैं वह हुआ अयिल मुस्तस्ना मुतलकन हैसु उलिमा अव्वलन बिवजही युसहिहु तक्सीमहु कमा अरफ्ता। अच्छा भाई, पहले यहां आगे सबक देखने से पहले यहां एक इश्काल और उसका जवाब समझ लें भाई। ये याद रखो, इस्तिस्ना पर एक बड़ा इश्काल होता है। इश्काल ये होता है कि जब मैंने कहा जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन, तो ये मुस्तस्ना मुत्तसिल को जहन में रखें, जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है भाई, यानी जैद पहले दाखिल था। तो यहां दो ही सूरतें बनती हैं अकलन भाई, या तो जैद अल कौम में दाखिल होगा या दाखिल नहीं। हम बात किसकी कर रहे हैं, मुत्तसिल की। तवज्जो है, मैं एतराजी का अकली एतराज होता है यहां पर भाई। तो यहां पर जैद के अंदर दो ही सूरतें हैं, या तो ये माकबल के अंदर दाखिल होगा या दाखिल नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि जैद माकबल में दाखिल नहीं है, तो फिर तो ये उलमाए नहव के इजमा के खिलाफ हो जाएगा। उलमाए नहव का इजमा है कि मुस्तस्ना मुत्तसिल मुखरज होता है। तवज्जो है, फिर सुनो इश्काल। यहां जा अनिल कौमु इल्ला ज़ैदन ये जैद मुस्तस्ना मुत्तसिल है, मुस्तस्ना मुत्तसिल है। तो इस जैद में दो ही इहतमाल आकलन बनते हैं, ये माकबल में दाखिल होगा या दाखिल नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि जैद माकबल में दाखिल नहीं था, तो ये तो उलमाए नहव के इजमा के खिलाफ हो गया, इसलिए क्योंकि इनके नजदीक मुस्तस्ना मुत्तसिल कहते ही किसको है, जो मुखरज होता है, जो मुखरज। और इखराज तभी होगा जब एक चीज पहले एक में दाखिल हो, शामिल हो, फिर उसको इल्ला के जरिए क्या कर लिया जाए, उसको निकाल लिया जाए। तो मालूम हुआ यह कहना तो सही नहीं कि जैद उनमें दाखिल ही ना हो। और अगर आप यह कहते हैं कि जैद पहले दाखिल था, दूसरी सूरत यह बन गई कि जैद उनमें दाखिल था, तो फिर इस सूरत में तो आपके कलाम में तनाकुज लाजिम आता है। मसलन जब आपने कहा जा अनिल कौमु, जा अनिल कौमु, तो जैद भी उस कौम के अंदर दाखिल है, तो गोया आपने यूं कहा है जा अज़ैदुन माअल कौमी, जैद भी कौम के साथ आया है। जब सिर्फ अभी आपने सिर्फ क्या कहा जा अल कौमु, और इस अल कौम में कौन दाखिल है, जैद दाखिल है, तो गोया आपने यूं कहा जा अज़ैदुन माअल कौमी, जैद भी कौम के साथ आया है। और आगे इल्ला के बाद आपने जैद के आने की नफी कर दी कि जैदुन लम यजी, जैद नहीं आया। तो ये तो आपके कलाम में तनाकुज आ गया। कलाम के इब्तदाई हिस्से से मालूम हो रहा है कि जैद आया है, और कलाम के आखिरी हिस्से से पता चल रहा है कि जैद नहीं आया है, तो ये आपके कलाम में तनाकुज आया और ये तो दुरुस्त नहीं कि एक आकिल शख्स के कलाम के अंदर क्या आ जाए, तनाकुज आ जाए। तवज्जो है जी। फिर सुने इश्काल भाई, यहां जैद मुस्तस्ना मुत्तसिल है, इसमें दो ही इहतिमाल हैं, या ये माकबल में दाखिल होगा या दाखिल नहीं। अगर आप ये कहते हैं ये माकबल में दाखिल नहीं था तो ये उलमाए नहव के इजमा के खिलाफ हुआ, क्योंकि वो तो कहते हैं ये मुस्तस्ना मुत्तसिल मुखरज होता है, और मुखरज तो वही हो सकता है जो पहले दाखिल हो फिर उसको निकाल लिया जाए। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि माकबल में दाखिल नहीं था, और अगर आप ये कहते हैं कि यह माकबल में दाखिल था, दूसरा अखले इहतमाल यही है, तीसरी तो कोई सूरत ही नहीं है, ये दाखिल था, तो फिर तो आपके कलाम में तनाकुस लाजिम आया। जा अल कौम से पता चला कि जैद आया है, क्योंकि जैद भी उनमें शामिल था, और इल्ला जैदन से पता चला कि जैद नहीं आया, तो आपके कलाम में क्या आ गया, तनाकुस आ गया, तनाकुस आ गया। तो उलमा इसका जवाब देते हैं, उलमा जवाब देते हैं कि यहां खराबी इस वजह से आई कि आपने जाआ की निस्बत, यानी आपने मजीअत की निस्बत सिर्फ अल कौम की तरफ की। पूरा कलाम क्या था, जा अनिल कौम इल्ला जैदन, आपने जा अनी यानी मजीअत की निस्बत सिर्फ किसकी तरफ कर दी, अल कौम की तरफ कर दी, इसलिए आपके कलाम में यह खराबी लाजिम आई और यह एतराज वारिद हुआ। आपने जाआ की निस्बत किसकी तरफ कर दी, सिर्फ अल कौम की तरफ। तवज्जो है, जुबान से बोले भाई, बात जब समझ में आए तो मुझे पता चले आपको बात समझ में आ रही है। तो यहां पर खराबी क्यों लाजिम आई कि आपने जा के निस्बत सिर्फ किसकी तरफ कर दी है, अल कौम की तरफ। याद रखें यहां फेल की निस्बत अल कौम इल्ला जैदन इस पूरे मजमुए की तरफ है, यह पूरा मजमुआ मुस्नद इलैह है। तवज्जो है, सिर्फ अल कौम मुस्नद इलैह नहीं बल्कि इल्ला जैदन को भी साथ जोड़ें, अल कौम इल्ला जैदन यह सारा मुस्नद इलैह है भाई, पूरे मजमुए की तरफ मजीअत की निस्बत हो रही है। जैसे आप आम कलाम में भी करते रहते हैं, आप कहते हैं जानी गुलामु जैदिन, जानी मेरे पास जैद का गुलाम आया। अब मुझे बताइए ये जा की निस्बत सिर्फ गुलाम की तरफ हो रही है या गुलामु जैदिन पूरे मजमुए की तरफ हो रही है, पूरे मजमुए की तरफ हो रही है। आप ये नहीं कहना चाहते कि गुलाम आया, बल्कि आप क्या कहना चाहते हैं, जैद का गुलाम आया। तो ये जो पूरा मजमुआ है गुलामु जैदीन यानी मुजाफ और मुजाफिल है, इन दोनों के मजमुए की तरफ जाआ की निस्बत हो रही है। या दूसरी मिसाल ले लें, मसलन मैं कहता हूं जाअनी रजुलुन आलिमुन, मेरे पास आलिम आदमी आया। अब इसमें भी देखो जाआ की निस्बत सिर्फ रजुल की तरफ नहीं हो रही बल्कि रजुल और साथ उसकी सिफत को भी जोड़ें, इस पूरे मजमुए की तरफ जाआ की निस्बत हो रही है। आप ये नहीं कहना चाहते मेरे पास आदमी आया, बल्कि आप कहना चाहते हैं मेरे पास आलिम आदमी आया है। तो जाआ की निस्बत पूरे मजमुए की तरफ हो रही है। तवज्जो है, और याद रखो जाब्ता यह है कि जब फेल की निस्बत एक पूरे मजमुए की तरफ की जाए तो उसके पहले जुज पर वो एराब आएगा जिसका फेल तकाजा कर रहा है, पहले जुज पर वो एराब आएगा जिसका फेल तकाजा कर रहा है। जैसे जानी गुलामु जैदिन, ये जाआ फेल क्या चाहता है, गुलाम को अपना फाइल बनाना चाहता है, तो ये जाआ की निस्बत गुलामु जैदिन पूरे मजमुए की तरफ है, तो इसके अंदर जो पहला जूज है उस पर वो एराब आएगा जिसका फेल तकाजा कर रहा है, और फेल यहां रफा का तकाजा कर रहा है, इसलिए यहां गुलाम पर रफा आ गया। और दूसरा जूज जो है वो कभी मजरूर होगा, जैसे यहां पर है मुजाफिले होने की वजह से, जानी गुलामु जैदीन जा की निस्बत किसकी तरफ है, पूरे मजमुए की तरफ है, और जब भी फेल की निस्बत पूरे मजमुए की तरफ हो तो पहले जूस पर वो एराब आएगा जिसका फेल तकाजा कर रहा है, और दूसरा जूस कभी मजरूर होगा जैसे यहां पर है यानी मुजाफिले होने की वजह से, और कभी दूसरा जूस माकबल के ताबे होगा, जानी रजुलन आलिमुन, ये जा की निस्बत पूरे मजमुए रजुलुन आलिमुन की तरफ हो रही है, तो इसके अंदर जो पहला जूज है रजुलुन उस पर वो एराब आएगा जिसका फेल तकाजा कर रहा है, और फेल इसको रफा देना चाहता है, इसको अपना फाइल बनाना चाहता है, तो ये मरफू है। और दूसरा जूज कभी तो मजरूर होता है और कभी माकबल के ताबे होता है, यहां पर यह आलिमुन रजुल के ताबे है यानी उसकी सिफत है, यानी उसकी सिफत है। तवाबे आप जानते हैं सिफत तवाबे में से है, तवाबे पांच हैं और उन पर वही एराब आता है जो उनके मतबू पर होता है, जैसे सिफत है उस पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर, ताकीद है उस पर वही एराब आता है जो मुअक्कद पर हो, मातूफ पर वही एराब आता है जो मातूफुन अलै पर हो, इसी तरह बदल पर वही एराब आता है जो मुबदल मिनहू पर हो, और अथवे बयान पर वही एराब आता है जो मातूफुन अलै पर हो। तवज्जो है। तो यहां पर भी जानी रजुलुन आलिमुन, या आलिमुन रजुल की सिफत है, उसके ताबे है, तो इस सिफत पर भी वही एराब आएगा जो इसके मतबू यानी मौसूफ पर है भाई। और तीसरी फिर सूरत यह है, तीसरी सूरत यह है, अगर उस मजमुए के दूसरे जुज पर या अगले अज्जा पर जर भी नहीं आ सकता और वह माकबल के ताबे भी नहीं है तो फिर वह मनसूब होता है, फिर वो मंसूब होता है, जैसे कि मुस्तस्ना है भाई। मुस्तस्ना यहां पर भी देखो, जा अनिल कौमु इल्ला जैदन, जा अनी की निस्बत सिर्फ अलकौम की तरफ है या अलकौमु इल्ला जैदन की तरफ है? अलकौमु इल्ला जैदन मजमुए की तरफ है, और जब मजमुए की तरफ फेल की निस्बत हो तो पहले जुज पर वही अराब आता है जिसका फेल तकाजा कर रहा है, और यहां जा अलकौमु को रफा देना चाहता है तो अलकौम पर क्या आया? रफा। और दूसरा जुज जो है मुस्तस्ना वो मनसूब है, वो क्योंकि उस वो मुजाफिले भी नहीं, उस पर जर भी नहीं आ सकता, वो मकबल के ताबिया भी नहीं कि उस पर वही एराब आ जाए, तो तीसरी सूरत यह है कि वो फिर वो मनसूब होता है, जैसे कि ये मुस्तस्ना है भाई। और इस पर नसब इसलिए आता है कि ये मफूल के मुशाबे हो गया, किसके मुशाबे हो गया? मफूल के मुशाबे हो गया, फेल के बाद, फेल सबसे पहले किसका तकाजा करता है? फाइल का, और जब फाइल के साथ मिलकर फेल पूरा हो जाता है तो फिर आगे वो मफूल बिही को नसब देता है। तवज्जो है। तो यहां पर भी फेल अपने फाइल के साथ मिलकर ताम हो चुका है, अब आगे वो इल्ला जैदन, ये जैदन मुस्तस्ना को नसब दे रहा है, तो ये मफूल के मुशाबे हुआ, मफूल के मुशाबे हुआ। फिर सुनो हासिल कलाम भाई, कि जब भी फेल की निस्बत, फेल या शिबे फेल की निस्बत किसी मजमुए की तरफ की जाए तो उस मजमुए के पहले जुज पर तो वही एराब आएगा जिसका इतकाजा वो फेल वगैरह कर रहे हैं, और बाकी अगले अज्जा वो कभी तो मजरूर होंगे मुजाफिले होने की वजह से, और कभी वो माकबल के ताबे होंगे, उन पर भी वही एराब आएगा जो माकबल पर आ रहा होगा, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो फिर उसके बाद तीसरी सूरत यही है कि वो मनसूब होंगे, जैसे कि मुस्तस्ना है। और मनसूब इसलिए है मुस्तस्ना क्योंकि इसकी मुशाबहत मफूल के साथ आ गई। मफूल भी देखो, जब फाइल के बाद आता है तो उस पर क्या आता है? नसब। यहां पर भी जान अल कौमु, कौमु फाइल है, तो फाइल के बाद इल्ला जैदन, ये मनसूब है, मुस्तस्ना है, मुशाबे है, मुशाबे है मफूल के भाई, मुशाबे है मफूल के। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ कि मुस्तस्ना मिनहू और मुस्तस्ना दोनों का मजमूआ ये मुस्नद इलैह है। जान अल कौमु इल्ला जैदन मुस्नद इलैह क्या है? अलकौमु इल्ला जैदन, अलकौमु मुस्तस्ना मिनहू है और जैदान मुस्तस्ना है, तो मुस्तस्ना मिनहू और मुस्तस्ना दोनों का मजमुआ ये मुस्नद इले है। तवज्जो है, ये बात याद रखना, आगे इसी के बारे में और भी थोड़ी सी तफसील आएगी कि मुस्नद इले पूरा मजमुआ है, क्या क्या शामिल है इसके अंदर, मुस्तस्ना मिनहू भी शामिल और मुस्तस्ना भी शामिल है। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम अब समझ लो, इश्काल क्या हुआ था कि मुस्तस्ना मुत्तसिल के अंदर जो इल्ला वगैरह के बाद जिक्र है वो माकबल में दाखिल होगा या दाखिल नहीं? अगर दाखिल ना हो फिर तो इजमा के खिलाफ लाजिम आएगा, क्योंकि इसका मुखरज होना जरूरी है, और मुखरज तभी हो सकता है जब पहले दाखिल हो, और अगर आप इसको माकबल के अंदर दाखिल मानते हैं तो फिर आपके कलाम में तनाखुज लाजिम आएगा। इल्ला से माकबल के कलाम से पता चला है जैद आया है, और इल्ला के माबाद से पता चला कि जैद नहीं आया, ये तो आपके कलाम में तनाखुज आ गया भाई। इश्काल समझ में आया? तो अब हासिल कलाम ये कि ये एतराज और ये इश्काल इसलिए लाजिम आया था कि आपने फेल या शिबे फेल का इस्नाद सिर्फ अलकौम यानी माकबल यानी यू का मुस्तस्ना मिनहू की तरफ किया था, सिर्फ मुस्तस्ना मिनहू की तरफ आपने किसका इस्नाद किया? जा का। तो इससे क्या पता चला? जैद आया है, और फिर इल्ला जैदन से क्या पता चला? कि जैद नहीं आया। तो खराबी इसलिए लाजिम आई कि आपने उस फेल की निस्बत सिर्फ मुस्तस्ना मिनहू की तरफ कर दी। मुस्तस्ना मिनहू की तरफ निस्बत न करो बल्कि मुस्तस्ना मिनहू और मुस्तस्ना के मजमुए की तरफ क्या करो? उस फेल की نسبت کرو, یعنی یوں کہو, یعنی یوں کہو, یہ جو زید القوم میں داخل تھا اور پھر نکالا گیا, توجہ ہے, یہ اسناد سے پہلے پہلے ہے, اسناد سے پہلے پہلے زید القوم میں داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے نکال بھی دیا گیا, اس کے بعد اس پورے مجموعے کی طرف جا کی نسبت کر دی, اب خرابی لازم نہیں آئی. اب اس پورے مجموعے سے کیا پتا چلا کہ باقی لوگ آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا, صرف القوم کی طرف نسبت کرتے پھر خرابی لازم آ رہی تھی, اس القوم میں تو زید بھی شامل تھا, اسے تو پتا چلا زید آیا ہے, اور الا زیدن سے کیا پتا چلتا زید نہیں ہے, لیکن آپ نے القوم کی طرف جاء کی نسبت کرنے سے پہلے ہی زید کو اس سے نکال لیا. القوم الا زیدن, القوم سے کس کو نکال دیا, زید کو نکال دیا, اب اس سارے مجموعے کی طرف جا کی نسبت کر دی, اور اس پورے مجموعے سے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ باقی لوگ آئے ہیں اور زید نہیں آیا. یہاں ایسا نہیں ہے کہ پہلے زید کی نفی ہو پھر اس کا اس بات ہو. بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ مستثنی کا مستثنی منہ میں داخل ہونا اور پھر اس کا جو اخراج ہے اللہ کے ذریعے, یہ فعل یا شبہ فعل کے اسناد سے قبل ہوگا, اور پھر اس پورے مجموعے کی طرف اسناد کیا جائے گا جس کے اندر زید کا پہلے ہی اخراج ہو چکا ہے, تو پھر کوئی تناقض لازم نہیں آتا. بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا. تو یہاں یہ بڑا پیچیدہ اعتراض ہوتا تھا جو حل ہو گیا. جی اب دیکھیے بھائی کتاب پر, وہ ہوا ایل مستثنا مطلقن, بھائی پہلے صرف متن دیکھیے, اب مستثنی کا اعراب بتانے لگے ہیں. میں نے تو آپ کو نقشہ بنوایا تھا, پوری تفصیل سمجھائی تھی, لیکن اس نقشے کے اندر اگر آپ غور کریں تو مستثنی کا اعراب چار ہی قسم پر بنتا ہے. اس پورے نقشے میں آپ غور کر لیں, مستثنی بعض صورتوں میں منصوب تھا, مستثنی بعض صورتوں کے اندر مجرور تھا, اور مستثنی بعض صورتوں کے اندر بدل تھا, اور مستثنی بعض صورتوں کے اندر علی حسب العوامل تھا. یہی چار اعراب کی قسمیں تھیں وہاں پر بھائی. اب انہی کو یہاں بیان کرنے لگے ہیں, اور سب سے پہلے منصوب کو ذکر کریں گے. دیکھو متن وہ ہوا منصوب, مستثنی منصوب ہوگا. تو ان چار قسموں میں سے سب سے پہلے منصوب کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ منصوبات کا بیان چل رہا ہے, منصوبات کا بیان چل رہا ہے, اور یہاں پر یہ مستثنی کو ذکر ہی اس لیے کیا کیونکہ مستثنی کا اعراب اکثر حالتوں میں نصب ہوا کرتا ہے, تو پہلے نصب کو ذکر کر رہے ہیں بھائی, یعنی ان تمام صورتوں کو جن میں مستثنی منصوب ہوگا. اب دیکھیے ذرا متن بھائی. اچھا بھائی پہلے بلکہ ذرا دوہرا لیں, منصوب کون کون سی صورتوں میں تھا, جب کس کے بعد ہو, خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکون, ان کے بعد ہو تب ہی منصوب ہوگا, اور اگر الا کے بعد آئے تو اگر وہ مستثنی منقطع ہو تو بھی منصوب, اور اگر وہ کلام موجب ہو تو بھی منصوب, اور اگر مستثنی مقدم ہو تو بھی منصوب ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی. اب وہ یہ ساری صورتیں اکٹھی ذکر کریں گے. دیکھیے بھائی صرف متن تو کہتے ہیں وہ ہوا منصوب, اور مستثنی جو ہے منصوب ہوگا, اذا کان بعد الا, جب وہ مستثنی کس کے بعد آئے, الا کے بعد آئے, ایسا الا غیر الصفتی, اس حال میں کہ وہ صفت نہ ہو. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ الا کبھی کبھار صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. یاد رکھو یہاں آگے چل کر ایک اور لفظ غیرن کے بارے میں بھی بحث کریں گے. غیرن استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور صفت کے لیے بھی, اسی طرح الا بھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے اور صفت کے لیے بھی, لیکن یاد رکھنا الا کو وضع کیا گیا ہے استثناء کے لیے, اور غیرن کو وضع کیا گیا ہے کس لیے, صفت کے لیے. تو الا استثناء کے لیے ہے لیکن کبھی صفت کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, یعنی غیرن کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے, اور غیرن وضع ہے صفت کے لیے لیکن کبھی کبھار الا کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, یعنی استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. اسی لیے صاحب کافیہ فرما رہے ہیں کہ مستثنی منصوب ہوگا اذا کان بعد الا, جب کس کے بعد آئے, الا کے بعد, اور الا تو کبھی کبھی صفت کے لیے بھی آ جاتا ہے, تو بتلا دیا غیر الصفتی, اس حال میں کہ یہ الا صفت کے لیے نہ ہو بھائی, تو پھر اس صورت میں मुस्तस्ना मंसूब होगा, फी कलाम इन मूजब इन, किसके अंदर हो, कलाम मूजब के अंदर हो। कलाम मूजब किसे कहते हैं, जिसमें नफी नहीं और इस्तेफाम न हो। भाई आगे मतन जरा देखते चले जाइए, औ मुकद्दमन अलल मुस्तस्ना मिनहू, या दूसरी सूरत यह है कि मुस्तस्ना मुकद्दम हो मुस्तस्ना मिनहू पर, तब भी क्या होगा, मंसूब। औ मुनकतियन फिल अक्सरी, या मुस्तस्ना मुनकति हो तब भी मंसूब होगा, फिल अक्सरी अक्सर लुगात के अंदर। भाई अक्सर लुगात के अंदर यानी अक्सर कबीलों की लुगत में अरब के। औ कान बाद खला व अदा, या मुस्तस्ना खला या अदा के बाद हो तो भी मंसूब होगा, फिल अक्सरी अक्सर इस्तेमालात के अंदर। कभी कभार मजरूर भी आएगा भाई खला और अदा के बाद, लेकिन अक्सर इस्तेमालात में क्या होगा, खला और अदा के बाद भी मंसूब होगा। इसी तरह आगे देखिए, औ मा खला व मा अदा वलैसा वला यकूनू, और इन चारों के बाद भी मुस्तस्ना मंसूब होगा। तो नसब वाली सारी सूरतें इन्होंने इकट्ठी जिक्र कर दी। भाई अब आइए सारे को शरा के साथ देखें। कहते हैं वह हुआ अइल मुस्तस्ना मुतलकन हैसु उलिमा अव्वलन बिवजही युसहिहु तक्सीमहु कमा अरफ्ता। भाई याद रखो, वह हुआ, यह हुआ जमीर राजे है मुस्तस्ना मुतलक को। मुस्तस्ना की दो किस्में हैं ना, मुत्तसिल और मुनकते। तो ये मुत्तसिल या मुनकते को ये जमीर नहीं राजे, बल्कि मुतलक मुस्तस्ना को राजे है, जो दोनों किस्मों को शामिल है। तो मुस्तस्ना मुस्तस्ना, चाहे वो मुत्तसिल हो चाहे मुनकते, दोनों को शामिल है। तो ये जमीर किसको राजे है, मुस्तस्ना मुतलक को राजे है। भाई मुतलक को, तो इस पर सवाल पैदा होता है कि ए साहिब काफिया, आप हुआ जमीर मुस्तस्ना मुतलक की तरफ राजे कर रहे हैं, आपने माकबल में भी मुस्तस्ना की तारीफ नहीं की थी, फौरन ही उसकी तकसीम शुरू कर दी थी, और फिर जब उसकी दो किस्में बयान, जब दो किस्में आई तो आपने उनमें से हर एक की तारीफ कर दी, और अब उसके बाद अब आप एराब बयान करने लगे हैं, और अभी तक आपने मुतलक मुस्तस्ना की तारीफ नहीं की। तो साहिब जामी उसका जवाब देंगे कि भाई माकबल में जब अल मुस्तस्ना शुरू में कहा था तो वहीं से एक बात समझ में आ गई थी कि अल मुस्तस्ना से वो इसम मुराद है जिसको इल्म नह वाले मुस्तस्ना कहते हैं, यानी किसी ना किसी दर्जे में मुस्तस्ना की समझ आ गई वहां से। तारीफ का तो पूरी जामे माने तारीफ तो जिक्र ना हुई, लेकिन उस अल मुस्तस्ना कहने से ही ये बात समझ में आ गई कि उस इसम का जिक्र होने लगा है जिसको इल्म नह में मुस्तस्ना कहा जाता है। तो एक दफा वहां से मुस्तस्ना की समझ आ गई, मुस्तस्ना मुतलक समझ में आ गया जिसको इल्म नह में मुस्तस्ना कहते हैं, और फिर आगे उसकी तकसीम कर दी कि वो दो किस्म पर है, मुत्तसिल होगा या मुनकते, और ये दोनों किसके बाद वाके होते हैं, चाहे मुत्तसिल हो चाहे मुनकते, ये इल्ला और उसके अखवात के बाद वाके होते हैं, इनमें से एक किस्म मुखरज है और एक किस्म मुखरज नहीं है। तो लिहाजा जब मशहूरों में अल मुस्तस्ना कहा तो उससे किसी न किसी दर्जे में मुस्तस्ना का पता चल गया कि जिसको इल्म नह वाले मुस्तस्ना कहते हैं। फिर जब दोनों किस्मों की तारीफ की उससे यह भी पता चल गया कि मुस्तस्ना जो भी होता है वो हमेशा इल्ला और उसके अखवात के बाद वाके होता है, चाहे मुत्तसिल हो चाहे मुनकते हो, चाहे मुखरज हो चाहे गैर मुखरज हो, लेकिन किसके बाद आता है, इल्ला और उसके अखवात के बाद। तो दो एतबार से मुस्तस्ना की यहां समझ आ गई पढ़ने वाले को, दो एतबार से मुस्तस्ना की समझ आ गई, इसलिए साहिबे काफिया यानी मातिन ने मुस्तस्ना की तारीफ नहीं की इख्तिसार पर अमल करते हुए, ताकि कलाम मुख्तसर रहे। भाई जब अल मुस्तस्ना कहा वहीं से आपको पता चल गया कि वो जिसको इल्म नह में मुस्तस्ना कहते हैं वो मुराद है, फिर जब उसकी दोनों किस्में बयान कर दी तो पता चल गया कि मुस्तस्ना किसे कहते हैं, जो इल्ला और उसके अखबात के बाद वाके हो, चाहे मुखरज हो चाहे मुखरज ना हो, तो उसकी पहचान काफी हद तक हो गई, लिहाजा अब तारीफ करने की कोई हाजत नहीं, फौरन ही उसका एराब बयान करना शुरू कर दिया। और नीज इसलिए भी कि भाई मुतलक मुस्तस्ना जो है उसके कोई अलग अहकाम नहीं है, मुतलक मुस्तस्ना के कोई अलग अहकाम नहीं है। उसकी दो किस्में जो हैं मुत्तसिल और मुनकतिअ, मुत्तसिल के भी अलग अहकाम, मुनकतिअ के भी अलग अहकाम, लेकिन मुतलक मुस्तस्ना जो है जिसमें ये दोनों शामिल हो उसके कोई और अलग खास अहकाम नहीं है, लिहाजा उसकी हाजत नहीं है उसको जिक्र करने की। भाई जितना समझ में आ गया वही काफी है, लिहाजा अब लिहाजा उसकी तारीफ नहीं की और उसका एराब बयान करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं वह हुआ अइल मुस्तस्ना मुतलकन, यानी कि मुस्तस्ना जो है मुतलकन, यानी उसमें मुत्तसिल और मुनकतिअ की कैद ना हो भाई, वो जो है हैसु उलिमा अव्वलन, इस तौर पर कि उसको पहले जान लिया गया, भी वजहीन ऐसे तरीके पर, युसहिहु तकसीमहु, जो सही कर देता है उसकी तकसीम को। मुस्तस्ना मुतलक को पहले शुरू में जब मुस्तस्ना कहा वहीं से जान लिया गया था कि जिसको इल्मे नह में मुस्तस्ना कहते हैं, तो मुस्तस्ना को ऐसे तरीके पर जान लिया गया कि उसकी तकसीम सही हो जाती, यानी किसी न किसी दर्जे में उसको जान लिया गया। तो कहते हैं अइल मुस्तस्ना मुतलकन, यानी मुस्तस्ना इस हाल में कि जब वो मुतलक हो, यानी उसमें मुत्तसिल और मुनकते की कैद न हो, हैसु उलिमा अव्वलन, इस तौर पर कि ये मुस्तस्ना मुतलक जो है अव्वलन मालूम हो गया, भी वजहीन ऐसे तरीके पर कि युसहिहु तकसीमहु, कि उसकी तकसीम करना सही है, ऐसे तरीके पर मालूम हुआ कि उसकी तकसीम करना सही हो गया था, कमा आरफ्ता, जैसे कि आप जान चुके हैं भाई, जैसे कि आपने जान लिया। वसानियन, और सानियन जो है मुस्तस्ना को जान लिया गया, तवज्जो है, सानियन का आतफ पीछे जो आया ना अव्वलन उस पर है, हैसु उलिमा अव्वलन और हैसु उलिमा सानी, और इस तौर पर कि मुस्तस्ना मुतलक जो है उसको दूसरी मर्तबा जान लिया गया, बिमा युतफत्तनु लहु मिन तारीफ किस्मैही, वो जो मालूम होता है, युतफत्तनु अय्युअलमु, वो जो समझ में आता है, जो जाना जाता है, लहू किसको, मुस्तस्ना को, वो दूसरी मर्तबा उसको जान लिया गया, बिमा युतफत्तनु लहू, वो जो मालूम हो जाता है, मिन तारीफ किस्म ही, अपनी दोनों किस्मों की तारीफ से, दोनों किस्मों की तारीफ से मुतलक मुस्तस्ना का कुछ ना कुछ पता चल गया। क्या पता चला? कि वो हमेशा किसके बाद होगा, इल्ला और उसके अखवात के बाद होगा, चाहे मुत्तसिल हो चाहे मुनकतिअ हो। फिर तर्जमा देखो, वसानियम बिमा युतफत्तनु लहु मिन तारीफ किस्मै ही, और ये जो मुतलक मुस्तस्ना है दूसरी मर्तबा इसको जान लिया गया, जो वो समझ में आया, मिन तारीफ किस्मै ही, इसकी दोनों किस्मों की तारीफ से, आनिल मदकूर बाद इल्ला व अखवातिहा, यानी ये कि ये मुस्तस्ना मुतलक वो है जो मजकूर होता है इल्ला और उसके अखवात के बाद, सवा उनका न मुखरजन और गैर मुखरजिन, बराबर है कि वो मुखरज हो या गैर मुखरज हो, जो भी हो होगा किसके बाद, हमेशा इल्ला और उसके अखवात के बाद भाई। वलिहादा लम युअर्रिफ अला हिदतिन, इसीलिए मातिन ने उसकी अलहदा तारीफ नहीं की, रौमन लिल इख्तिसार, इख्तिसार का इरादा करते हुए, रौम भाई राम या रूमु, रौमन का माना है इरादा करना, इसी से मराम है, मराम का माना है मकसूद भाई, तो अलहदा उसकी तारीफ नहीं की, रौमन लिल इख्तिसारी, इख्तिसार का इरादा करते हुए, ताकि कलाम मुख्तसर रहे भाई, क्योंकि ये मतन है, बिला जरूरत लंबी बात करने की यहां हाजत नहीं है भाई। तो दो जगह से मुस्तस्ना मुतलक हमें समझ में आ रहा था, इसलिए उसकी तारीफ जिक्र नहीं की भाई। आगे देखिए, मनसूबुन वुजूबन इदा कान वाकिअन बाद इल्ला, यानी मुस्तस्ना मनसूब होगा वुजूबन भाई, भाई एक किस्म मुस्तस्ना की आई थी, वो जो मैंने नक्शा बनवाया था कि जब मुस्तस्ना मुत्तसिल हो और कलाम कौन सा हो, गैर मुजब हो, और मुस्तस्ना मुकद्दम ना हो, और मुस्तस्ना मिनहू मजकूर हो, तो वहां दो एराब जायज थे, नसब भी जायज था और बदल बनाना भी जायज था, तवज्जो है। तो देखो वहां पर नसब वाजिब नहीं था, लेकिन ये जो किस्म बयान कर रहे हैं, बाकी किस्मों के अंदर नसब वाजिब है, इसीलिए यहां वजूब की कैद लगाई। तो कहते हैं मनसूबुन वजूबन, और मुस्तस्ना जो है वो मनसूब होगा वजूब लाजमी तौर पर, इजा कान वाकिअन बाद इल्ला, जब वो किसके बाद वाकिअ हो, इल्ला के बाद वाके हो, ला बाद गैरिन व सिवा व गैर हिमा, यानी गैरुन सिवा वगैरह इनके बाद वाके न हो जी, इल्ला के बाद हो, गैर सिफती इस हाल में कि वो सिफत के अलावा हो। मैंने बताया इल्ला कभी कभार सिफत के लिए भी आता है, वजह तो ये इस्तिस्ना के लिए है, लेकिन कभी सिफत के लिए भी आ जाता है। तो तालिब इल्म कहीं ये ना समझे कि जब भी इल्ला के बाद कोई आएगा लफ्ज आएगा और कलाम मूजब में आएगा तो वो मंसूब होगा, लिहाजा गैर सिफती की कैद लगा दी। क्या कैद लगा दी कि वो इल्ला कौन सा होना चाहिए, सिफत वाला ना हो। भाई कहते हैं गैर सिफती, ये हाल बनाए इसको मंसूब पढ़े भाई, तवज्जो है, गैर सिफती। नीज बास कहते हैं गैर सिफती पढ़ना भी यहां सही है, गैर सिफती पढ़ना भी सही है, यानी इसको इल्ला की सिफत बना दो। और इल्ला तो मुजाफुन इले है, बाद इल्ला बादा मुजाफ, इल्ला मुजाफुन इले, तो मौसूफ मजरूर, तो गैर सिफती उसकी सिफत भी क्या होगी, मजरूर। इस पर इश्काल होता है कि इल्ला, इल्ला से तो लफ्ज इल्ला मुराद है, तो ये तो मारिफा है भाई, ये मारिफा है, और गैर सिफती, गैर की इजाफत तो मारिफा की तरफ हो जाए, फिर भी ये क्या रहता है, नकेरा रहता है, तो ये तो मौसूफ सिफत में मुताबकत नहीं है, ये कैसे उसकी सिफत बन गई। तो जवाब याद रखना, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि गैर की इजाफत जब किसी चीज की जिद की तरफ कर दी जाए तो फिर वो मारिफा बन जाता है। इल्ला में दो ही सूरतें थी, या वो इस्तिस्ना के लिए होगा या सिफत के लिए। तो जब गैर सिफत कहा तो मालूम हुआ कौन सा मुराद है, इस्तिस्ना वाला, तो ये मारिफा बन गया भाई, क्या बन गया, मारिफा बन गया, बाज़ उलमा फरमाते हैं। तो इस सूरत में इसको सिफत भी बना सकते हैं और गैर सिफती भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आम उलमा फरमाते हैं कि नहीं, ये मारिफा नहीं बनता। तो इस सूरत में फिर इस पर गैर सिफती पढ़े, हाल बनाए, तो इसको हाल बनाए भाई, गैर सिफती भाई। यहां और बाद शारहीन ने एतराज किया है, एतराज किया कि बहस चल रही है मुस्तस्ना की, हुआ देखो वह हुआ मंसूबुन, यह हुआ जमीर भी किसको राजे की, मुस्तस्ना को राजे की, किसको, तो मुस्तस्ना की बहस चल रही है, तो बाद इल्ला, तो इल्ला के बाद कौन आएगा, मुस्तस्ना ही आएगा ना, और तो किसी की बात ही नहीं चल रही, तो लिहाजा मातिन को गैर सिफती नहीं कहना चाहिए था, यह लफज वो जायद ले आए और उनको पता भी नहीं चला, तवज्जो है, ये इश्काल हुआ। साहिब जामी मैंने बतलाया अजीब शरा है उनकी भाई, वो साहिब काफिया पर होने वाले हर एतराज का बेहतरीन जवाब जिक्र फरमाते हुए आगे चले जाते हैं। साहिब जामी फरमाते कि नहीं, कोई इश्काल नहीं होता कि गैर सिफत का लफ्ज जायद है, बल्कि बल्कि बहस तो ठीक है मुस्तस्ना की चल रही है, और इस इल्ला के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा, मुस्तस्ना ही होगा, ये इल्ला सिफत वाला नहीं, लेकिन फिर भी साहिब काफिया ने गैर सिफत को सिर्फ इसलिए जिक्र किया ताकि कहीं तालिब इलम से जुहूल ना हो जाए, उसकी बेतवज्जो ही ना हो जाए, वो कहीं ये ना समझ बैठे बेख्याली में, उसके जहन में ये बात ना आ जाए कि इल्ला के बाद कलाम मूजब में जो भी आएगा उस पर क्या पढ़ना है, नसब पढ़ना है। बतला दिया कि नहीं, गैर सिफती सिफत के अलावा भाई, तवज्जो है, तो ये इसलिए जिक्र किया ताकि तालिब इलम के जहन से ये बात न निकल जाए भाई, वरना बात तो वाजे थी, लेकिन फिर भी ये पढ़ने वाले कौन हैं, तुलबा होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो उनके बाद उनके जहन से ये बात निकल जाए भाई। तो कहते हैं गैर सिफती कैयद बिही, देखो आप जवाब दे रहे हैं, साहिब काफिया ने इसको कैद किया इस गैर सिफत के साथ, इस बाद इल्ला को कैद किया किसके साथ, गैर सिफत, यानी ये वाला लफ्ज बीच में लेकर आए, व इल्लम यकुन इल वाके बाद इल्ला लतील सिफती दाखिलन फिल मुस्तस्ना, व इल्लम यकुन इल वाके बाद इल्ला, अगरचे नहीं होता वो जो वाके होता है उस इल्ला के बाद, अल्लतील सिफती जो किसके लिए हो, सिफत के लिए, दाखिलन फिल मुस्तस्ना, मुस्तस्ना में दाखिल। भाई इधर देखिए, कहते हैं बात किसकी चल रही है, मुस्तस्ना की। साहिबे जामी फरमा रहे हैं अगरचे ये बात जाहिर है कि वो इल्ला जो सिफत के लिए आता है उसके बाद जो भी लफ्ज आएगा वो मुस्तस्ना नहीं है भाई, वो मुस्तस्ना नहीं है, तवज्जो है। इल्ला अक्सर किसके लिए आता है? इस्तिस्ना के लिए। इस सूरत में जो इसके बाद आएगा वो होगा मुस्तस्ना, लेकिन इल्ला कभी कभार सिफत के लिए भी आता है। इस सूरत में जो इल्ला के बाद होगा वो मुस्तस्ना नहीं है। तो यहां बात किसकी चल रही है? मुस्तस्ना की। जब मुस्तस्ना की बात चल रही है तो जब कहा वो जो इल्ला के बाद आए, तो मालूम हुआ इल्ला के बाद जो आएगा वो कौन होगा? मुस्तस्ना होगा, मुस्तस्ना होगा। मालूम हुआ इस इल्ला से वो वाला इल्ला मुराद नहीं है जो सिफत के लिए हो, क्योंकि वो इल्ला जो सिफत के लिए होता है उसके बाद जो आता है वो तो मुस्तस्ना नहीं होता, वो तो मुस्तस्ना नहीं होता। लिहाजा बज़ाहिर ये कैद नहीं लगानी चाहिए थी। तवज्जो है। फिर क्या बात हुई कि ये बात किसकी चल रही है? मुस्तस्ना की। और वो मुस्तस्ना उस इल्ला के बाद आएगा जो जो इल्ला किस लिए आया हो? इस्तिस्ना के। और अगर इल्ला सिफत के लिए आया हो तो इसके बाद जो आएगा वो तो मुस्तस्ना है ही नहीं, वो तो इस बहस से ही खारिज हो गया, क्योंकि जब कहा वह हुआ मनसूबुन, मुस्तस्ना क्या होगा? मनसूब। तो वो इल्ला जो सिफत के लिए आया है उसके बाद तो जो आ रहा है वो तो मुस्तस्ना है ही नहीं, उस पर तो ये हुक्म लगा ही नहीं रहे। फिर इस गैर सिफत की कैद लगाने की हाजत क्यों पेश आ गई? तो साहिब जामी उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई ठीक है, अगरचे वो इल्ला जो सिफत के लिए आए उसके बाद जो वाकई होगा वो तो मुस्तस्ना है ही नहीं, वो इस बहस से ही खारिज है, लेकिन फिर भी कहीं तालिबे इल्म के जहन से ये बात निकल ना जाए, इसलिए गैर सिफत की वजाहत कर दी साहिब काफिया ने। बात समझ में आ गई। कहते हैं कैयद बिही मातिन ने इसके साथ इस कलाम को मुकैद किया, वह इल्लम यकुनिल वाकिउ बादा इल्लल्लती लिस्सिफति दाखिलन फिल मुस्तस्ना, अगरचे वो जो वाक होता है उस इल्ला के बाद जो सिफत के लिए आता है वो अगरचे दाखिल नहीं है मुस्तस्ना में। इबारत समझ में आई? वह इल्लम यकुनिल वाकिउ बादा इल्ला, अगरचे वो जो इल्ला के बाद वाक है वो नहीं है, वो जो इल्ला के बाद वाक़े है, वो जो वाक़े है इल्ला के बाद, अल्लतील सिफती, वो इल्ला जो किस लिए आया है? सिफत। तो वो इल्ला जो सिफत के लिए आया है उसके बाद जो वाक़े हो रहा है वो नहीं है दाखिलन फिल मुस्तस्ना, मुस्तस्ना में दाखिल, वो मुस्तस्ना में दाखिल नहीं है। लि अल्ला युज़हला अन्हु, ताकि कहीं तालिबे इल्म से ज़ुहूल ना हो जाए, ताकि कहीं तालिबे इल्म के जहन से ये बात निकल ना जाए। क्या बात हुई? बात भी पता नहीं वाजे हुई या नहीं, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं। बात किसकी चल रही है? मुस्तस्ना की। और वो इल्ला जो सिफत के लिए आए उसके बाद जो वाक़े होता है वो तो मुस्तस्ना होता ही नहीं है, वो तो खुद ही निकल गया, लिहाजा गैरा सिफत की कैद नहीं लगानी चाहिए थी। लेकिन साहिब जामी फरमाते हैं अगरचे वो दाखिल नहीं होता, लेकिन फिर भी साहिब काफिया ने जिक्र फरमा दिया ताकि कहीं तालिबे इल्म के जहन से ये बात निकल ना जाए और वो हर जगह इल्ला के बाद नसब ही ना पढ़ना शुरू कर दे। आगे देखिए, फी कलाम इन मूजब इन, किसके अंदर आए? कलाम मूजब के अंदर आए। आई लई सभी नफी वला नही वला इस्तिफाम इन, के यानी जो नफी और नही और इस्तिफाम न हो। नहु जा अनिल कौम इल्ला जैदन, वो लोग मेरे पास आए सिवाय जैद के। देखो इसके अंदर जा अनिल कौम इल्ला जैदन, न इसके अंदर कोई हरफ नफी है, न ये नही है, और न ही इसके अंदर इस्तेफाम है। तो ये जैदन क्या होगा? मनसूब होगा वजूबन। आगे देखिए, वहतरज बिही अम्मा इदा वकाफी कलामिन गैर मूजबिन। कहते हैं वहतरज बिही, और इस कैद के जरिए, इस कैद के जरिए ये जो कहा ना फी कलामिन मूजबिन, ये इल्ला किस में हो? कलाम मूजब में हो। वहतरज बिही इस कैद के जरिए एहतराज किया अम्मा उस मुस्तस्ना से, इजा वका फी कलामिन गैर मूजबिन, जब वो वाक़े हो कलाम गैर मूजब में, जब कलाम गैर मूजब में वाक़े हो तो फिर उसके अंदर नसब वाजिब नहीं है, जैसे कि आपने नक्शे में तफसील पढ़ी थी भाई। तो कहते हैं वक्त रजा बिही अम्मा इजा वका फी कलामिन गैर मूजबिन, और एहतराज किया इस कैद के जरिए मुस्तस्ना से जब वो वाक़े हो कलाम गैर मूजब में, لِأَنَّهُ لَيْسَ حِينَ إِذٍ وَاجِبًا نَصْبِ عَلَى مَا سَيَجِئُ, इसलिए क्योंकि मुस्तस्ना उस वक्त वाजिब नसब नहीं होता बवजह उसके जो अनकरीब आगे आ जाएगा, यानी जो आगे हम तफसील बयान करेंगे। वला हाजत हाहुना इला कैदिन आखरा जी, यहां एक और बाज़ शारहीन ने कहा था, एतराज किया था साहिब काफिया की इबारत पर, उन्होंने कहा था फी कलामिन मूजबिन तामिन, यहां एक और कैद भी होनी चाहिए थी, फी कलामिन मूजबिन तामिन, ऐसा कलाम मूजब जो ताम हो भाई, ताम हो, ताम होने का क्या माना, यानी जिसमें मुस्तस्ना मिनहू मजकूर हो। तवज्जो है, बाद शारहीन ने कहा कि साहिब काफिया की इबारत में कमी है, साहिब काफिया ने कहा फी कलामिन मूजबिन, यहां इनको और यहां इनको एक और कैद ताम मिन भी जिक्र करनी चाहिए थी कि वो मुस्तस्ना किस में वाकई हो रहा हो जो इल्ला के बाद आया है, फी कलामिन मूजबिन ताम मिन, कलाम मूजब ताम के अंदर, यानी वो ताम हो गैर ताम न हो। और ताम होने का क्या माना, कहते हैं ताम होने का माना यह है कि मुस्तस्ना मिनहू कलाम में मजकूर हो, मुस्तस्ना मिनहू कलाम में मजकूर हो, तो यह कैद बढ़ानी चाहिए थी ताकि इस जैसी मिसालें निकल जाएं। अगली सतर में आ रहा है क़रअतु इल्ला यौमा कज़ा, मिसाल मिल गई क़रअतु इल्ला यौमा कज़ा, ताकि इस जैसी मिसालें निकल जाएं। वजह यह कि इसके अंदर यह जो यौमा है यह मनसूब है और यह मुस्तस्ना होने की वजह से मनसूब नहीं है बल्कि यह मफूल फी होने की वजह से मनसूब है, यह ज़र्फ है, तवज्जो है। और देखो क़रअतु और इल्ला यहां दरमियान में मुस्तस्ना मिनहू महजूफ है, मजकूर नहीं, मजकूर नहीं, तवज्जो है। यूं करो यहां जरा मुस्तस्ना मिनहू ले आओ, क़रअतु शहरन, मैंने एक महीने तक पढ़ा, इल्ला यौम कज़ा, मगर इतने दिन। आप किसी को कोई अपना कोई बतलाना चाहते हैं, ये किताब मैंने पूरा महीना पढ़ी लेकिन चंद दिन छोड़कर, तो आप उसको क्या कहते हैं, क़रअतु शहरन इल्ला यौम कज़ा। तो क़रअतु फ़ेल बा फ़ाइल, ताज़मीर इसके अंदर मरफू महल्लन इसका फ़ाइल, और शहरन ये क्या बनेगा, मफ़ऊल फ़ीह बनेगा। जब मफूल फी ये बन गया तो इल्ला यौम कजा, अब ये यौम मफूल फी नहीं बन सकता, मफूल फी तो एक होता है जिसको फेल नसब देता है, तो ये शहरन मुस्तस्ना मिनहू है और इससे इल्ला यौम कजा का इस्तिस्ना किया जा रहा है। तो देखो मुस्तस्ना मिनहू मजकूर है, तो ये शहरन क्या हुआ, मनसूब लफजन है, ये मफूल फी है, और इल्ला हरफे इस्तिस्ना, और ये यौम मनसूब है बिना बर इस्तिस्ना के, मुस्तस्ना होने की वजह से मंसूब है, मफूल फी होने की वजह से मंसूब नहीं। अब इसमें से जरा शहरन को हजफ कर दो, क़रअतु इल्ला यौमा कज़ा, अब क़रअतु फ़ेल बा फ़ाइल और आगे इल्ला हरफ इस्तिस्ना और यौमा कज़ा, ये बन जाएगा मफूल फी। पहले शहरन मफूल फी था और यौमा कज़ा मुस्तस्ना था, अब यौमा कज़ा क्या बन जाएगा, मफूल फी बन जाएगा, ज़र्फ। तो इसका नसब इस मुस्तस्ना होने की वजह से आया या अब मफूल फी होने की वजह से है, जब शहरन को आपने हजफ कर लिया तो अब ये इसका नसब मफूल फी होने की वजह से है, मुस्तस्ना होने की वजह से नहीं है, तवज्जो है। तो सुनो अब एतराज सुनो, बाद शारहीन ने एतराज किया साहिब काफिया पर कि आपको फी कलामिन मूजबिन तामिन कहना चाहिए था, कलाम मूजब ताम हो और ताम होने का क्या माना कि मुस्तस्ना मिनहू मजकूर हो, जब मुस्तस्ना मिनहू मजकूर होगा तो शहरन जो है मसलन वो मफूल फी बनेगा और इल्ला यौमा कजा क्या बनेगा, मुस्तस्ना बनेगा, तो इसका नसब मुस्तस्ना होने की वजह से है। अब आपकी तारीफ में ये दाखिल हो गया, आपने भी क्या कहा मुस्तस्ना क्या होगा, मनसूब होगा, और अगर आप ये कैद नहीं लगाते तो क़रअतु इल्ला यौमा कजा, अब भी यौमा कजा मनसूब तो है लेकिन क्यों मनसूब है, क़रअतु इल्ला यौम कज़ा, अब यौम क्यों मनसूब है, मफूल फी होने की वजह से, क्योंकि मफूल फी जो पीछे था उसको तो आपने हजफ कर लिया, अब ये मफूल फी बन गया, पहले ये वो मफूल फी शहरन था, अब ये तो अब देखो ये मफूल फी होने की बिना पर मनसूब है, मुस्तस्ना होने की बिना पर मनसूब नहीं, तो लिहाजा ताम की कैद लगाते कि मुस्तस्ना मिनहू को जिक्र होना चाहिए, अगर जिक्र नहीं होगा तो फिर नसब मुस्तस्ना होने की वजह से नहीं आएगा। इश्काल समझ में आ गया, तो साहिबे जामी बतलाएंगे, साहिबे जामी उसका जवाब देंगे, जवाब यह देंगे कि नहीं भाई ये कैद लगाने की कोई हाजत नहीं, वजह यह कि यहां पर साहिबे काफिया जो है सिर्फ यह बयान करना चाहते हैं कि इल्ला और उसके अखावात का माबाद मनसूब होगा वजूबन, वजूबन मंसूब होगा, मुस्तस्ना होने की बिना पर मंसूब हो यह नहीं बतलाना चाहते भाई किसको जिक्र कर रहे हैं। इल्ला के बाद आए तो वो क्या होगा, मंसूब होगा, तो वो ये नहीं बताना चाहते कि मुस्तस्ना होने की वजह से मंसूब होगा, बल्कि सिर्फ क्या बतलाना चाहते हैं, वो मंसूब होगा बस, जिस वजह से भी मंसूब हो उससे हमारी बहस नहीं। तो करा तो इल्ला या मकजा, इसमें भी देखो मंसूब है या नहीं, बेशक मुस्तस्ना होने की वजह से नहीं है, मफूलफी होने की वजह से है, लेकिन है तो मंसूब। वो भी सिर्फ ये बतलाना चाहते हैं कि वो जगह बतला रहे हैं जब हां वो मंसूब होगा, मुस्तस्ना होना उसका जरूरी नहीं, यानी मुस्तस्ना की वजह से उसका नसब जरूरी नहीं। भाई क्या दलील है कि वो मुतलक नसब बयान करना चाहते हैं, मुस्तस्ना की वजह से नसब बयान नहीं करना चाहते। कहते हैं आप खुद देख लें, आगे ये जो हमने अभी मतन पढ़ा था इसी में आया था, खला और आदा के बाद भी क्या होता है, मुस्तस्ना मंसूब होता है। तवज्जो है, इसी का वह हुआ मंसूब। इसी इबारत में आगे चलकर क्या जिक्र किया कि खला और आदा के बाद भी मुस्तस्ना मंसूब होगा। हालांकि याद रखना, खला और आदा के बाद जो नसब आता है ना वो मफूल भी ही होने की वजह से है। खला और आदा फेल है, तवज्जो है, खला और आदा फेल है, और फेल के लिए फेल जैसे फाइल को रफा देता है, मफूल को नसब। तो खला और आदा के बाद जो मंसूब आता है वो मुस्तस्ना होने की वजह से मंसूब नहीं, बल्कि किस वजह से मंसूब है, मफूल भी ही होने की वजह से मंसूब है। तवज्जो है, तो वहां पर जो नसब आया वो मुस्तस्ना होने की वजह से आया या मफूल भी ही होने की वजह से, मफूल भी ही होने की वजह से, मफूल खला और अदा के बाद जो नसब आया है वो मुस्तस्ना की होने की वजह से नहीं आया बल्कि मफूल भी ही होने की वजह से नसब आया। मालूम हुआ यहां जो नसब जिक्र है मुतलक नसब मुराद है, वो नसब नहीं है जो किस पर हो, मुस्तस्ना पर हो, वो मुराद नहीं है। तवज्जो है भाई, मुस्तस्ना मंसूब होता है, जो खला और आदा के बाद है वो भी क्या होगा, मंसूब, लेकिन वो नसब मुस्तस्ना होने की वजह से नहीं है बल्कि किस वजह से है, मफूल भी ही होने की वजह से है। इसी तरह याद रखो, तवज्जो से सुनो, आगे लैसा और लायकूनु के बाद भी मुस्तस्ना क्या होगा, मंसूब होगा, तवज्जो है, लेकिन वो मुस्तस्ना होने की वजह से नसब नहीं है बल्कि लैसा और लायकूनु, ये अफाले नाकिसा में से है, तवज्जो है, और अफाले नाकिसा क्या अमल करते हैं, अपने इसम को रफा देते हैं और खबर को नसब देते हैं, तो इनके बाद जो मुस्तस्ना मंसूब होगा वो इनकी खबर होने की बिना पर होगा। बात समझ में आई, तवज्जो नहीं, तवज्जो नहीं, फिर सुनो, यहां साहिब काफिया पर बाद शारहीन ने एतराज किया कि उन्होंने फी कलामिन मुजबिन कहा, तो वो शारहीन फरमाते हैं फी कलामिन मुजबिन तामिन कहना चाहिए था। भाई क्यों तामिन क्यों कहना चाहिए था, कहते हैं ताकि कराअतु इल्ला यौम कजा, ये मिसालें इससे निकल जाएं, ये मिसालें इस मिसाल को निकलना चाहिए, क्योंकि इल्ला यौम कजा, ये यौम पर नसब जो है वो मुस्तस्ना होने की वजह से नहीं है बल्कि मफूल फी होने की वजह, ज़र्फ होने की वजह से इस पर नसब है। तवज्जो है, तो इस पर ज़र्फ होने की वजह से इस पर नसब आ रहा है, और यहां पर वो साहिबे काफिया कौन सा नसब जिक्र करना चाह रहे हैं, वो नसब जो मुस्तस्ना की वजह से मुस्तस्ना होने की वजह से आए, तवज्जो है, तो ताम की कैद लगाएंगे तो इस जैसी मिसाल निकल गई। हां अगर इसमें शहरन होता, करा तो शहरन इल्ला यौम कजा, फिर इसका नसब मुस्तस्ना होने की वजह से है और इसको दाखिल भी होना चाहिए था, तो कलफी कलामिन मुजबिन तामिन कहते तो वो दाखिल हो जाता। तो साहिब जामी ने जवाब दिया कि नहीं भाई, साहिब काफिया मुतलक नसब बयान करना चाहते हैं, इल्ला और कलिमाते इस्तेसना के बाद मुतलकन नसब बयान करना चाहते हैं, किन सूरतों में वजूबन नसब आएगा, मुस्तस्ना होने की वजह से नसब आ रहा हो वो बयान करना उनका मकसद नहीं है। क्यों भाई, क्या दलील है आपके पास, तो बताया कि आगे खला और आदा को भी जिक्र कर रहे हैं और लैसा और लायकूनु को भी जिक्र कर रहे हैं, इनके बाद जो आएगा मुस्तस्ना वो क्या होगा, मंसूब, उस पर भी नसब आएगा लेकिन मुस्तस्ना होने की वजह से नसब नहीं आएगा। खला और आदा के बाद जो नसब आएगा वो मफूल भी ही होने की वजह से आएगा, और लैसा और लायकूनु के बाद जो नसब आएगा वो उनकी खबर होने की बिना पर आएगा, क्योंकि उनकी खबर क्या होती है, मंसूब होती है। तो लिहाजा ये मिसाल भी दाखिल हो गई, करा तो इल्ला यौम कजा, ये कलाम मूजब है, ये कलामे, और इल्ला के बाद क्या आ रहा है, नसब आ रहा है, चाहे जिस वजह से भी आए लेकिन आ तो नसब रहा है, लिहाजा इस मिसाल को, ये मिसाल भी दाखिल हो गई, इसको निकालने की कोई हाजत ही नहीं। बात समझ भी आई कि नहीं? अच्छी तरह जी। तो कहते हैं वला हाजता हा हुना इला कैदिन आखरा, और कोई जरूरत नहीं है यहां एक और कैद की। वह हुआ अय्यकून अल कलाम उल मूजब ताम मन, और वो ये कि वो कलाम मूजब ताम हो। ताम होने की क्या सूरत मैंने बताई कि क्या माना ताम होने का, कि मुस्तस्ना मिनहू जिक्र हो। भी अय्यकून अल मुस्तस्ना मिनहू मस्कूरन फी ही बाई सूरत के मुस्तस्ना मिनहू उसके अंदर मजकूर हो, यानी ताम होने के ये माना है कि मुस्तस्ना मिनहू मजकूर होना चाहिए। और देखो करा तू इल्ला यौम कजा, इसमें तो मुस्तस्ना मिनहू मजकूर नहीं, लिहाजा इसको निकलना चाहिए क्योंकि यहां नसब मुस्तस्ना होने की वजह से नहीं है बल्कि जर्फ होने की वजह से, लिहाजा इसको निकलना चाहिए। तो साहिब जामी बताएंगे नहीं, इसको निकालने की कोई हाजत नहीं, ये दाखिल हो रहा है और इसको दाखिल ही होना चाहिए। तो कहते हैं फिर देखिए भी अन यकून अल मुस्तस्ना मिनहु मस्कूरन फी ही बाई सूरत के मुस्तस्ना मिनहु उसके अंदर मस्कूर हो। लिया खुरुजा ताकि निकल जाए, नहु क़रातु इल्ला यौम कज़ा इस जैसी मिसालें। फइन्नहु मनसूबुन अला ज़र्फियति ला अला इस्तिस्ना, इसलिए क्योंकि यह ज़र्फ होने की वजह से मनसूब है, इस्तिस्ना की वजह से मनसूब नहीं है। लिअन्न अल कलाम जी, साहिब जामी ने बतलाया कि नहीं भाई इस कैद के लगाने की कोई हाजत नहीं है। क्यों? लिअन्न अल कलाम फी कौनी ही मनसूबन मुतलकन, इसलिए क्योंकि ये कलाम जो है इल्ला वगैरह के मां बाद के मुतलकन मनसूब होने के बारे में है। ला फी कौनी ही मनसूबन अलल इस्तिस्ना, मनसूब अलल इस्तिस्ना होने के बारे में यह कलाम नहीं है। यह कलाम मुतलकन इल्ला के मबाद के मनसूब होने के बारे में है, इस्तिस्ना की बिना पर मंसूब होने के बारे में यह कलाम नहीं है। तो कहते हैं लि अन्नल कलाम फी कौन ही मनसूबन मुतलकन, इसलिए क्योंकि यह कलाम जो है मुस्तस्ना के मुतलकन मनसूब होने के बारे में है। ला फी कौन ही मनसूबन अलल इस्तिस्ना, उसके इस्तिस्ना की वजह से मनसूब होने के बारे में यह कलाम नहीं है। बिदलील कौली ही मातिन के इस कौल की दलील के साथ, औकान बादा खला वादा, आगे मातिन क्या फरमाएंगे, औकान बादा खला वादा, क्योंकि इनके बाद जो मुस्तस्ना होता है वो इस्तिस्ना की वजह से मंसूब नहीं होता, बल्कि क्यों मंसूब होता है, मफूल बिही होने की वजह से मंसूब होता है। तो इससे पता चला कि वो मुतलक नसब की बात कर रहे हैं, नसब अलल इस्तिस्ना की बात वो नहीं कर रहे। बात समझ में आ गई। इल्ला अन युकाल, फिर आगे फरमाते हैं, किसी ने क्या एतराज किया था कि ताम की भी कैद होनी चाहिए ताकि करातु इल्ला यौम कजा जैसी मिसालें निकल जाएं। साहिब जामी फरमाते हैं नहीं, इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए ताम की कैद की जरूरत नहीं। हां बाज और मिसालें हैं उनको निकालने के लिए ताम की कैद होनी चाहिए, बाज और मिसालें हैं उनके लिए ताम की कैद होनी चाहिए। जैसे कुरिया इल्ला यौम कजा, करातु से फेले मजहूल बना लिया, बात समझ में आ गई, फाइल को हजफ कर दिया, कुरिया इल्ला यौम कजा और यौम को अब नाइबुल फाइल बना दिया, कुरिया इल्ला यौम कजा। अब कहते हैं इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए देखो इसके अंदर कुरिया फेल आया और आगे आ रहा इल्ला यौम कजा, तवज्जो है, और ये देखिए ये यौम किसके बाद है, इल्ला के बाद है। इन्होंने भी ऊपर क्या कहा था, मनसूबुन इजा कान बादा इल्ला, और नीस फी कलाम इन मूजब, इन साहिब काफिया ने कहा था कलाम मूजब होना चाहिए, कुरिया इल्ला, इसमें भी देखो नफी नहीं इस्तेफाम नहीं है, ये भी क्या है कलाम मूजब। तो यहां दोनों शर्तें पूरी हैं, इल्ला के बाद भी है और कलाम भी मूजब है, फिर भी इल्ला यौम कजा मनसूब नहीं है बल्कि मरफू है, नाइबुल फाइल है कुरिया के लिए। तो लिहाजा इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए ताम की कैद लगानी चाहिए थी कि ताम हो कलाम, यानी कुरी आ शहरुन इल्ला यौम कजा, तो यहां शहरुन मुस्तस्ना मिनहु मजकूर होता तो फिर ये ताम होता, तो फिर ताम होता और फिर इल्ला यौम कजा ने मनसूब ही आना था। बात समझ में आ गई। इल्ला अन युकाल, मगर यह कि यूं कहा जाए अल हाजतु इला हादल कैदी, कि जरूरत जो है इस कैद की, इन नमा हुआ लि इखराज मिसली, वो इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए ही है जैसे कुरिया इल्ला यौम कजा, فإنه مرفوع وجوبا لا منصوب, اس لیے کیونکہ یہ وجوبا مرفوع ہے منصوب نہیں ہے. حالانکہ آپ نے ہمیں کیا کہا تھا الا کے بعد آئے اور کلام موجب میں ہو تو وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا, تو یہاں تام کی قید ہوتی تو اس نے پھر اسے نکل جانا تھا. حاصل کلام پھر سن لیجئے بھائی, حاصل کلام یہ کہ بعض شارحین نے یہاں پر کہا کہ فی کلام موجبین کے ساتھ تام مین کی قید بھی لگانی چاہیے تھی کہ وہ مستثنا منصوب ہوگا وجوباً جب وہ کس کے بعد آئے الا کے بعد آئے اور ایسے کلام موجب میں ہو جو تام ہونا چاہیے. بھئی یہ قید کیوں لگائی جائے, کہتے ہیں اس لیے تاکہ قرأت الا یوم کذا اس جیسی مثالیں نکل جائیں. اگر یہ قید نہیں لگاؤ گے تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہو رہی ہے. قرأت الا یوم کذا اصل میں کیا تھا, قرأت شہرن یا قرأت کل یوم الا یوم کذا, تو شہرن یا کل یوم وغیرہ کو کیا کر لیا گیا حذف کر لیا گیا اور وہ تھا مفعول فی. اب وہ تو مفعول فی ہے نہیں تو لہذا الا یوم کذا یہ یوم کذا یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اور یہاں صاحب کافیہ وہ والا نصب ذکر کر رہے ہیں جو استثناء کی وجہ سے آئے. کس کی وجہ سے آئے؟ جو استثناء کی وجہ سے نصب آئے اس کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. اور قرأت الا یوم کذا یہاں یوم کذا پر جو نصب آیا ہے وہ استثناء کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے, لہذا اس کو خارج ہونا چاہیے. اس کو حالانکہ یہ داخل ہو رہا ہے کیونکہ اس میں شرطیں پوری ہیں, یہ الا کے بعد بھی ہے اور کلام بھی موجب ہے تو یہ داخل ہو رہا ہے, حالانکہ اس کو خارج ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ تام کی قید لگا دیتے کہ وہ کلام موجب تام ہونا چاہیے یعنی مستثنا منہ مذکور ہونا چاہیے, لیکن اس وقت یہ داخل ہو رہا ہے حالانکہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے. تو صاحب جامی نے جواب دیا کہ نہیں بھائی یہ اس کو خارج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ داخل ہو رہا ہے اور اس کو داخل ہی ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ یہاں پر جس نصب کی بات صاحب کافیہ کر رہے ہیں وہ الا اور اس کے اخوات کے بعد مطلقاً نصب کی بات کر رہے ہیں, نصب للاستثناء کی بات نہیں کر رہے, وہ نصب جو استثناء کی وجہ سے آئے اس کی بات نہیں کر رہے. یاد رکھو یہ جو مستثنا کو ذکر کیا ہے کس کو مستثنا کسے کہتے ہیں جو الا اور اس کے اخوات کے بعد آئے, یہ بعض صورتوں میں منصوب ہوگا بعض صورتوں میں منصوب نہیں ہوگا, لیکن جو بھی صورت آپ دیکھ لیں یہ ہمیشہ ان کا حکم ما قبل کے مخالف ہوگا, یہ ہمیشہ مستثنا کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ یعنی یہ ماقبل کے مخالف ہوں گے. اگر ماقبل میں نفی ہے تو ان کا اثبات ہوگا اور اگر ماقبل میں اثبات ہے تو ان کی نفی ہوگی. تو یہ کہلائیں گے تو سارے مستثنا, خلا کے بعد آئے وہ بھی مستثنا, ادا کے بعد آئے وہ بھی مستثنا, اسی طرح لیسا لا یکون کے بعد آئے گا وہ بھی کیا ہوگا مستثنا, حاشا غیر و سوا سوا کے بعد آئے گا وہ بھی کیا ہوگا مستثنا, الا کے بعد آئے وہ بھی کیا ہوگا مستثنا ہوگا. تو کہلائیں گے تو مستثنا لیکن ان کا نسب کبھی استثنا کی وجہ سے ہوگا کبھی کسی اور وجہ سے ہوگا. توجہ ہے, جیسے قرأت الا یوم کذا, یہ الا یوم کذا یہ ہے تو مستثنا ہی کیونکہ الا کے بعد ہے, لیکن اس کا نسب وہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے ہے مستثنا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے کہ قرأت الا یوم کذا اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے تام کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں, کیونکہ یہاں پر صاحب کافیہ الا اور اس کے اخوات کے بعد جو مطلقاً منصوب آتا ہے چاہے کسی بھی وجہ سے منصوب آئے سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. الا اور اس کے اخوات کے بعد کیا آئے نصب آئے ان سب کو اکٹھا یہاں ذکر کر رہے ہیں, وہ ہوا منصوب ان وہ کیا ہوگا منصوب ہوگا. بھئی دلیل کیا ہے سب کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ آگے خلا اور عدا ما خلا اور ما عدا لیسا اور لا یکونو کا بھی ذکر آ رہا ہے, اور خلا اور عدا اور ما خلا ما عدا اور لیسا لا یکونو ان کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ یاد رکھو ما خلا اور عدا اور ما خلا ما عدا ان کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. جان القوم خلا زیدن جان القوم خلا زیدن یہ زید مستثنا تو ہے کیونکہ کس کے بعد ہے خلا کے بعد, لیکن اس پر نصب کیوں آیا یہ مفعول بھی بن رہا ہے, خلا فعل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور زیدن مفعول بھی ہے. توجہ ہے, اسی طرح لیسا اور لا یکونو کے بعد بھی مستثنا منصوب ہوتا ہے. جان القوم لیسا زیدن जानिल कौमो ले, मेरे पास वो लोग आए सिवाय किसके, जैद। अब लैसा के बाद भी देखो जैदन मंसूब है, लेकिन ये लैसा की खबर होने की बिना पर मंसूब है, क्योंकि लैसा अपने खबर को नसब देता है, तो लैसा के अंदर जमीर है वो इसका इसम और जैदन उसका उसकी खबर है। लेकिन कहेंगे सबको मुस्तस्ना, चाहे खला अदा के बाद आए, चाहे लैसा और ला यकूनू के बाद आए, तो मालूम हुआ जो इल्ला और उसके अखवात के बाद आए वो बासुरतों में मंसूब होता है, और वो नसब हमेशा इस्तेसना की बिना पर नहीं होता बल्कि और वजह से भी हो सकता है, लेकिन कहलाएंगे सारे मुस्तस्ना ही। तो साहिबे जामी फरमाएंगे कि यहां पर जो साहिबे काफिया ने कहा ना, वह हुआ मंसूब उन, मुस्तस्ना मंसूब होगा, ये वो वाला नसब नहीं जिक्र करना चाहते जो इस्तेसना की वजह से आए, बल्कि मुतलकन बस नसब आना चाहिए, उन तमाम सूरतों को इकट्ठा कर रहे हैं। और दलील इसकी यह है, इन्होंने यहां कहा ना वहां वह हुआ मंसूब उन, मुस्तस्ना क्या होगा मंसूब, इसी में आगे चलकर कहते हैं और खला और आदा के बाद भी, और मा खला और मा आदा के बाद भी, और लैसा और लायकूनू के बाद भी, हालांकि इनके बाद जो मुस्तस्ना मंसूब होता है वो मफूल भी ही या खबर होने की बिना पर मंसूब होता है, मुस्तस्ना होने की बिना पर मंसूब नहीं होता। मालूम हुआ यहां साहिब काफिया किस नसब की बात कर रहे हैं, जो इस्तेसना की वजह से आए या मुतलकन जो भी नसब आ जाए, मुतलकन जो भी नसब आ जाए, और क़रातु इल्ला यौम कज़ा इसमें भी नसब आ गया तो इसको दाखिल होना चाहिए, चाहे किसी वजह से भी नसब आया है लेकिन है तो नसब, तो इसको लिहाजा ताम की कैद लगाने की कोई हाजत नहीं इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए। हां बाज और मिसालों को निकालने के लिए ताम जैसी कैद की जरूरत पड़ेगी, जैसे क़ुरिया इल्ला यौम कज़ा, इसको निकालने के लिए ताम की कैद की जरूरत है। ताम का क्या माना, यानी मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर हो, कुरिया इल्ला यौम कज़ा, यहां भी कुरिया के बाद शहरुन या कुल्लु यौमिन जो मुस्तस्ना मिन्हू है उसको हजफ कर लिया गया, तो आगे इल्ला यौम कज़ा फिर वो नाई फाइल बन गया कुरिया के लिए। अब देखो इसमें सारी शर्तें पूरी हैं, कलाम भी मुजब है कुरिया इल्ला यौम कज़ा, और नीज ये यौम इल्ला के बाद भी वाके है, लेकिन इस पर नसब नहीं है बल्कि रफा है, यह नाइबुल फाइल बन रहा है कुरिया के लिए। इसमें शर्तें सारी पूरी हैं लेकिन यह मंसूब नहीं, और आपने तो हमें क्या कहा था कि इल्ला के बाद हो और कला में मूजब में हो तो हमेशा क्या होगा मंसूब हो गया, तो इसका इश्काल और एतराज होता है कि यहां तो मंसूब नहीं है, तो इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए ताम की कैद होनी चाहिए कि कला में मूजब कैसा हो, ताम हो, जब ये ताम की कैद आएगी तो अब इसको आप लेकर इश्काल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो ताम नहीं है, इसमें तो मुस्तस्ना मिन्हू मज़कूर ही नहीं है, तवज्जो है। तो हासिल कलाम क्या कि क़रातु इल्ला यौम कज़ा, इसको निकालने के लिए ताम की कैद की कोई हाजत नहीं, ये दाखिल हो रहा है और इसको दाखिल ही होना चाहिए, और क़ुरिया इल्ला यौम कज़ा इस जैसी मिसालों को निकालने के लिए ताम की कैद की जरूरत पेश आएगी। इसमें तो शर्तें सारी पूरी हैं लेकिन फिर भी नसब नहीं आ रहा, क्यों नसब नहीं आ रहा, क्योंकि ये ताम नहीं है, ताम की कैद होती तो इसको लेकर कोई एतराज न करता। बात समझ में आ गई। आगे देखिए कहते हैं वल आमिलु फी नसबिल मुस्तस्ना, और वो जो आमिल होता है मुस्तस्ना के नसब में। जी अब आमिल के बारे में बतलाने लगे कि मुस्तस्ना में आमिल क्या चीज है। जा अनिल कौम इल्ला जैदन, ये जैदन को नसब किसने दिया, तवज्जो है। तो याद रखो बाज उलमाए नहव भाई बड़े उलमाए नहव फरमाते हैं कि मुस्तस्ना के अंदर आमिल खुद मुस्तस्ना मिनहू होता है। कौन आमिल होता है, मुस्तस्ना मिनहू। जा अनिल कौम इल्ला जैदन, मुस्तस्ना मिनहू कौन है, अलकौम, ये अलकौम अमल कर रहा है, ये जैदन को नसब दे रहा है, तवज्जो है। तो फिर सवाल पैदा होता है भाई ये अलकौम ये कैसे नसब दे रहा है, ये तो आमिल नहीं है। तो वो कहते हैं भाई आपने तमीज के अंदर पढ़ा है इंदी ईशरून दिरहमन, ये दिरहमन को नसब किसने दिया, ईशरूना ने, ये माकबल में जो इसमें मुबहम ताम है, इशरूना क्या चीजें हैं, ये इस्म है मुबहम है, और किसके जरिए ताम हो रहा है, नूने जमा के जरिए, तो ये इसमें मुबहम ताम जो है तमीज को नसब देता है। तो ये दिरहमन को नसब किसने दिया? इशरूना ने। या आप कहते हैं इंदी रितलुन जैतन, मेरे पास एक रितल जैतून का तेल है, तो ये जैतन को नसब किसने दिया? ये रितलुन ने। तवज्जो है, आपने तमीज की बहस के अंदर पढ़ा कि जब तमीज मुफरत से इबहाम दूर कर रही हो तो वो मुफरत है, मुबहम जो ताम है किसके जरिए, इसम ताम होता है, इन्होंने आपको बतलाया था, कभी तनवीन के जरिए, कभी इजाफत के जरिए, कभी इन्होंने जमा वगैरह के जरिए इसम ताम होता है और यही नसब देता है आगे तमीज को। तो इशरूना दिरहमन, दिरहमन को किसने नसब दिया? इशरूना ने, कि जो ताम हो रहा है नूने जमा के जरिए। इंदी रितलुन जैतन, ये जैतन को नसब किसने दिया? रितलुन ने, जो कि ताम हो रहा है किसके जरिए? तनवीन के जरिए। बात समझ में आ गई। तो जैसे तमीज के अंदर माकवल वाला इसमें मुबहम ताम जो है वो नसब तमीज को देता है, तो मुस्तस्ना को भी कौन नसब देता है? मुस्तस्ना मिन हो भाई। ये बाज़ उलमाए की बार का मजहब है भाई। बात समझ में आ गई। जबकि बाज़ उलमा, बाज़ अइमा फरमाते हैं कि ये इल्ला जो है ये नसब देता है मुस्तस्ना को, और ये कायम मकाम फेल के है, अई अस्तस्नी, अस्तस्नी मुतकल्लिम का सीगा है, अस्तस्नी मैं इस्तिस्ना करता हूं जैदन, किसका? जैद। तो ये कहते हैं इल्ला जो है ये मुस्तस्ना को नसब देता है। कहते हैं जैसे आप देखते नहीं या अब्दल्ला, ये या कायम मकाम किसके है? अदऊ के है, और ये अब्दल्ला को नसब दे रहा है। ये या हर्फ निदा कायम मकाम अदऊ के है, तवज्जो है। तो यहां पर भी ये इल्ला किसके कायम मकाम है? अस्तस्नी के कायम मकाम है, और वो नसब दे रहा है यहां पर। बात समझ में आ गई। जबकि उलमाए बसरा फरमाते हैं कि मुस्तस्ना को फेल या माना फेल नसब देता है, माकबल में अगर फेल हो तो वो नसब देगा। जा अनिल कौम इल्ला जैदन, तो जा आ फेल माकबल में मौजूद है, जिसने अल कौम को रफा दिया वही जा आ जैदन को नसब दे रहा है मुस्तस्ना होने की वजह से। तवज्जो है। और अगर माकबल में फेल ना हो तो फिर वहां पर माना फेल जो है वो आमिल बनाएंगे, यानी लफ्जों से जो फेल समझ में आ रहा हो उसको क्या करेंगे? वो आमिल होगा, वो अमल करके मुस्तस्ना को नसब दे रहा है। तो बात समझ में आ गई। हासिल कलाम क्या हुआ कि मुस्तस्ना के अंदर आमिल क्या है? बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं कि मुस्तस्ना मिनहू जो है वो आमिल है, वो नसब दे रहा है मुस्तस्ना को, जैसे तमीज को माकबल का इसम नसब देता है। और बाज़ उलमा क्या फरमाते हैं कि मुस्तस्ना को ये इल्ला जो है ये नसब दे रहा है, जैसे या हर्फ निदा जो है अदऊ के कायम मकाम है और वो नसब देता है, इसी तरह ये इल्ला भी अस्तस्नी के कायम मकाम है और वो नसब दे रहा है। बात समझ में आ गई। और जबकि उलमाए बसरा फरमाते हैं कि मुस्तस्ना के अंदर आमिल फेल या माना फेल होता है, अगर फेल मौजूद है तो वो नसब दे रहा है, और अगर लफ्जों में फेल नहीं है तो माना के एतबार से वो फेल जो है वहां जो लफ्जों से समझ में आए वो फेल क्या है उसको आमिल बनाएंगे मुस्तस्ना के अंदर। बात समझ में आ गई। देखिए भाई किताब पर कहते हैं वल आमिलु फी नस्बिल मुस्तस्ना, और वो जो आमिल है मुस्तस्ना के नसब के अंदर, इजा कान मनसूबन अलल इस्तिस्नाई, जबकि वो इस्तिस्ना की बिना पर मनसूब हो, जब वो मुस्तस्ना इस्तिस्ना की बुनियाद पर मनसूब हो तब वो फेल या माना फेल आमिल होगा, अगर कोई और चीज नसब देने वाली है फिर तो इश्काल ही नहीं। तो कहते हैं इदा कान मनसूबन अलल इस्तिस्नाई, जबकि वो मुस्तस्ना इस्तिस्ना की बिना पर मनसूब हो, इंदल बिसरियति बसरा वालों के नजदीक, तो उनके नजदीक मुस्तस्ना के अंदर आमिल कौन होगा? अल्फ़िअलुल मुतकद्दिमु औ मानल फ़िअली, वो फेल जो मुकद्दम हो चुका है वो, औ मानल फ़िअली या माना फेल, वो आमिल होगा। बितवस्सुति इल्ला, इल्ला के तवस्सुत से, इल्ला के तवस्सुत के जरिए, यानी दरमियान में इल्ला है, इल्ला का वासिता बीच में है, तो इल्ला बीच में है फिर भी वो फेल अमल करके उसको नसब दे रहा है। तो इल्ला बीच में आ गया है और फिर वो फेल नसब दे रहा है, ये किस तरह वो उसकी वजाहत कर रहे हैं? कहते हैं लिअन्नहु शैउन यतअल्लकु बिल फिअली औ मानाहु, इसलिए क्योंकि ये जो इल्ला के बाद आ रहा है ये एक ऐसी चीज है, यतअल्लकु बिल फिअली औ मानाहु, जिसका फेल या माना फेल के साथ ताल्लुक है। कौन सा ताल्लुक? ताल्लुकन मानवीयन, मानवीय एतबार से। जानिल कौमु इल्ला जैदन, इस जैदन का भी जा के साथ माना के एतबार से ताल्लुक है, इसका भी माना के एतबार से ताल्लुक है। इस लहू निस्बतुन, इसलिए क्योंकि इसकी निस्बत है इला मा नुसीबा इलेही अहदुहुमा, उस चीज की तरफ जिसकी तरफ उन दोनों में से एक की निस्बत की गई है। देखो भाई इधर देखिए, जा अनिल कौम, तवज्जो से सुनो, जा अनिल कौम इल्ला जैदन, इस जैदन की निस्बत है और ताल्लुक है किसके साथ, अल कौम के साथ। जा अनिल कौम इल्ला जैदन, यह जैद को किससे निकाला गया है, कौम से निकाला गया है ना, तो जैद का कौम से ताल्लुक है, उसके साथ निस्बत है, उसका यह एक जुज है भाई, तवज्जो है। जब यह उसका जुज है अल कौम का और अल कौम की तरफ जा की निस्बत हो रही है, तो जैदन के साथ भी फेल का ताल्लुक आ गया या नहीं आ गया। फेल का ताल्लुक किससे है, अलकौम से, और इस अलकौम के साथ ताल्लुक किसका है, जैदन का भी है। तो जब अलकौम के साथ जा का ताल्लुक आया तो गोया जैदन के साथ भी उसका ताल्लुक आ गया, क्योंकि यह जैदन भी उसी अलकौम का जुज है। तवज्जो है, कहते हैं इज लहू निस्बतुन, इसलिए क्योंकि ये जो मुस्तस्ना है इल्ला के बाद, इसकी निस्बत है इला मा, उस चीज की तरफ, मा से मुराद है मुस्तस्ना मिनहू, इस मुस्तस्ना की निस्बत है इला मा, उस मुस्तस्ना मिनहू की तरफ, नुसीब इलैही अहदुहुमा, वो मुस्तस्ना मिनहू जिसकी तरफ फेल या माना फेल की निस्बत की गई है। मुस्तस्ना मिनहू की तरफ फेल या माना फेल की निस्बत होती है या नहीं, वो उसके अंदर आमिल होता है। बात समझ में आ गई। वक़द जा अबाद तमामिल कलामी, और तहकीक ये कलाम के ताम होने के बाद आया है, फशा बहल मफूला, तो ये मुस्तस्ना किसके मुशाबे हुआ, मफूल के। वही बात जो मैंने कल आज के सबक के शुरू में आपको बतलाई कि फेल का इसनाद सिर्फ अलकौम की तरफ नहीं है बल्कि अलकौम इल्ला जैदन पूरे मजमुए की तरफ है, और जब पूरे मजमुए की तरफ फेल की निस्बत हो तो पहले जुज पर वही आराब आता है जिसका फेल तकाजा कर रहा हो, और मा बाद अगर मुजाफिले है तो वह मजरूर होगा या वो माकबल के ताबिया होगा अगर वो सिफत वगैरह है, और अगर वो मुजाफिले भी नहीं है और माकबल के ताबिया भी नहीं है तो फिर वो मनसूब होगा जैसे कि मुस्तस्ना है। और मनसूब क्यों है, क्योंकि इसकी मुशाबहत किसके साथ आ गई, मफूल के साथ आ गई, फाइल के बाद मफूल आता है और मनसूब होता है, तो यहां पर भी फेल के ताम होने के बाद आगे मुस्तस्ना आ गया। बात समझ में आ गई। देखिए तर्जमा एक दफा फिर देख लीजिए, कहते हैं वल आमिलु फी नस्बिल मुस्तस्ना, के आमिल जो है मुस्तस्ना के अंदर, इदा काना मनसूबन अलल इस्तिस्नाई, जबकि वो मनसूब हो इस्तिस्ना की बिना पर, इंदल बिसरियति बसरा वालों के नजदीक, वो मुस्तस्ना के अंदर आमिल जो है अल्फ़ालुल मुतकद्दिम औमान अल्फ़ेली, वो फेल है जो मुकद्दम हो चुका है यानी पहले गुजर चुका है, औमान अल्फ़ेली या माना फेल है, बितवस्सुत इल्ला, किसके वास्ते से, इल्ला के वास्ते से कि वो बीच में आ रहा है, लिअन्नहु शैउन यतअल्लक़ु बिल फ़िअली औमानाहु ताल्लुकन मानवीयन, इसलिए क्योंकि जो मुस्तस्ना है ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक फेल या माना फेल के साथ है, और किस किस्म का ताल्लुक है, यह ताल्लुकन माना के एतबार से उसके साथ ताल्लुक है। भाई माना के एतबार से उससे कैसे ताल्लुक है, अब वो बयान कर रहे हैं, कहते हैं इज लहू निस्बतुन, इसलिए क्योंकि ये जो मुस्तस्ना है जो इल्ला के बाद आया है इसकी निस्बत है इला मा, मा से क्या मुराद है मुस्तस्ना मिनहू, इसलिए क्योंकि इस मुस्तस्ना की निस्बत है उस मुस्तस्ना मिनहू की तरफ, नुसीब इलैही अहदुहुमा, जिसकी तरफ फेल या माना फेल की निस्बत की जा रही है। जानिल कौम अलकौम की तरफ देखो फेल की निस्बत की जा रही है, कभी माना फेल की निस्बत की जा रही होगी, तो ये जो इल्ला जैदन है इसका ताल्लुक इस अलकौम के साथ है जिसकी तरफ फेल या माना फेल की निस्बत की जा रही है, यानी यूं कहो ये उसका एक जुज है, ये मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहू का एक जुज है। तो जब ये मुस्तस्ना मिनहू का जुज है तो मुस्तस्ना मिनहू के अंदर तो फेल अमल कर रहा है, तो मानन इसके अंदर भी क्या करेगा, मानवी एतबार से इसका भी ताल्लुक फेल से आ गया, तो इसके अंदर भी फेल अमल करेगा। बात समझ में आ गई, सारा हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।